Hastening family history and temple work.
वर्तमान समय में परिवार इतिहास और मंदिर कार्य में शीघ्रता करना परिवारों के उद्धार और उत्कर्ष के लिए जरूरी है. 1981 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले विवादग्रस्त लेखक विलियम सरोयान ने प्रेस को बताया था, हर किसी को मरना है, लेकिन मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि मैं नहीं मरूंगा. अब क्या होगा? इस जीवन में मृत्यु का सामना करते हुए इसके बाद क्या होगा, और मृत्यु के बाद जीवन का मनन करते हुए इसके बाद क्या होगा? आत्मा के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका उत्तर यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार पिता की सुख की योजना में बहुत सुंदरता से देता है. इस जीवन में हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम काम करते हैं, हम खेलते हैं, हम जीते हैं, और फिर हम मर जाते हैं. अय्यूब ने छोटे से प्रश्न पूछा था, यदि मनुष्य मरता है क्या वे फिर जीवित होगा? उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान के कारण उत्तर निश्चित रूप हाँ है. इस प्रश्न के लिए अय्यूब की व्याख्या का कुछ हिस्सा दिलचस्प है. मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का है, वह फूल की नई खिलता है, फूल की नई खिलता है और फिर तोड़ा जाता है. वृक्ष की जो आशा रहती है कि चाहे वह काटा डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी. हमारे पिता की योजना परिवारों के विषय में है. हमारे बहुत से धर्मशास्त्र परिवार की तुलना एक वृक्ष के साथ इसके जड़ों और शाखाओं से करते हैं. पुराने नियम में अपने अंतिम अध्याय में उद्धारकर्ता के द्वितीय आगमन की व्याख्या करते हुए मलाकी इस तुलना का उपयोग करता है. घमंड और दुष्ट के विषय में बोलते हुए वह टिप्पणी करता है कि वे आग में ठुंठ जलाए जाएंगे और कि वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा. मलाकी इस अध्याय के प्रभु दिलासा भरी प्रतिज्ञा के साथ समाप्त करता है. देखो, यहोवा ने उसे उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा. ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यनाश करूं. पुनर्स्थापना के आरंभ में 1823 में मोरोनी ने युवा जोसेफ स्मिथ को अपने आरंभिक निर्देश में इस संदेश पर जोर दिया था. संसार भर में ईसाई और यहूदी पुराने नियम के एलिय्याह के इस वर्णन को स्वीकार करते हैं. यीशु मसीह के समय में पहले वह मेलकिज़ेदेक पौरोहित्य की मुहरबंदी की शक्ति को धारण करने वाला अंतिम भविष्यवक्ता था. अप्रैल 1836 को एलिय्याह की वापसी कर्टलैंड मंदिर में हुई थी. उसने घोषणा की थी कि एक मलाकी की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था. उसने परिवारों को मोहरबंद करने के लिए पौरोहित्य कुंजियों को हमारे समय में दिया था. एलिय्याह ने के उद्देश्य को उससे मदद मिली थी, जिसे कभी कभी एलिय्याह की आत्मा कहा जाता है, जो कि जैसा एल्डर रसल एम नेल्सन ने सिखाया था, परिवार का दिव्य प्रकृति और पवित्र आत्मा की गवाही का प्रमाण है. उद्धारकर्ता ने बपतिस्मे की आवश्यकता पर जोर दिया था. उसने सिखाया था, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. उद्धारकर्ता ने स्वयं बपतिस्मा लेकर इसका उदाहरण रखा था. लेकिन उन मृतकों का क्या होगा जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ? 11 अक्टूबर 1940 को नावू में वायलेट किम्बल ने अपने पति एल्डर हीबर सी किम्बल को पत्र लिखा था, जो अन्य 12 के साथ ग्रेट ब्रिटेन में मिशन पर सेवा कर रहे थे. अक्टूबर महासम्मेलन कुछ दिनों पहले समापन हुआ था. मैं वायलेट किम्बल के निजी पत्र से पढ़ता हूँ. हमारे लिए गिरजे के संगठित होने के उपरांत सबसे बड़ा और अत्यधिक आकर्षक महासम्मेलन था. अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ ने एक नए और शानदार विषय में शुरुआत की थी. एक विषय था मृतकों का बपतिस्मा. इसके विषय में पॉलुस ने प्रथम कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 29वीं आयत में बोला है. जोसेफ को इसके विषय में प्रकटीकरण द्वारा पूरी व्याख्या दी गई थी. उन्होंने कहा था कि वे गिरजे के सदस्यों के लिए अपने उन रिश्तेदारों के लिए बपतिस्मा लेने का सौभाग्य होगा जो इस सुसमाचार के आने से पहले मर गए थे. उनके लिए बपतिस्मा लेकर हम उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और अपने और उन्हें प्रथम पुनरुत्थान में जी उठने का सौभाग्य देते हैं। उन्होंने कहा था मृतकों को आत्मिक जेल में सुसमाचार सिखाया जाएगा। वायलेट ने आगे लिखा, मैं अपनी माँ के लिए बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। क्या यह एक खूबसूरत सिद्धांत नहीं है? परिवारों को एक करने का यह जरूरी सिद्धांत नियम पर नियम थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां करके प्रकट किया गया था। प्रतिनिधि विधियां अनंत परिवारों को एक साथ जोड़ने, शाखाओं को जड़ों से जोड़ने के लिए आवश्यक नियम है। परिवार इतिहास और मंदिर कार्य के संबंध में परिवार और सिद्धांत स्पष्ट है। प्रभु ने अपने आरंभिक प्रकटीकरण में आपके मृतकों का संदर्भ किया था। हमारे अपने पूर्वजों के प्रति हमारा सिद्धांतिक दायित्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग का सेलेस्टियल राज्य परिवारों पर आधारित है। प्रथम अध्यक्षता ने सदस्यों को, विशेषकर युवाओं और अविवाहित वयस्कों को, परिवार इतिहास कार्य और अपने स्वयं के परिवार के नामों या अपने वार्ड के स्टे के सदस्यों के पूर्वजों की विविधियों पर जोर देने के लिए उत्साहित किया है। हमें अपने जड़ों और शाखाओं दोनों से जुड़ने की आवश्यकता है। अनंत राज्य के साथ एक साथ रहने का विचार वास्तव में शानदार है। विल्फर्ड वुड्रफ ने दर्शाया था कि जोसेफ स्मिथ मंदिर कार्य को स्थापित करने के लिए काफी लंबे समय तक जिए थे। जोसेफ स्मिथ 12 के परिषद के से अंतिम बार उन्हें उनका एंडोवमेंट देने के लिए मिले थे। भविष्यवक्ता के शहीद होने के बाद संतो ने नावू मंदिर का निर्माण पूरा किया था और राखी पर्वत पर जाने से पहले हजारों सदस्यों को आशीषित करने के लिए मोहरबंद की शक्ति का उपयोग किया गया था। 30 साल के बाद सेंट जॉर्ज मंदिर का निर्माण पूरा होने के पर अध्यक्ष ब्रिगम यंग ने समझाया था कि अनंत महत्व की बचाई जाने वाली विधियां अंततः जीवित और मृतक दोनों के लिए उपलब्ध थीं। अध्यक्ष विल्फर वुड्रफ ने सरलता से बताया था, प्रभु ने किसी अन्य नियम ने शायद ही मुझे इतना आनंद मिला दिया होगा जितना हमारे मृतक की मृत्यु ने दिया है कि हम प्रथम पुनरुत्थान की सुबह को और सेलेस्टियल राज्य में अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ होंगे। इस समय पृथ्वी पर होने का ये महान समय है। ये अंतिम प्रबंध है और हम हर काम में उद्धार के कार्य में शीघ्रता को महसूस कर सकते हैं जहां कई बचाने वाली विधियां शामिल हैं। इन बचाई जाने वाली विधियों पर उपलब्ध कराने के लिए अब हमारे पास संसार में लगभग हर स्थान पर मंदिर हैं। आत्मिक नवीनकरण, शांति, सुरक्षा और अपने जीवन में निर्देश पाने के लिए मंदिर जाना एक महान आशीष भी है। अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन ने प्रेरित नियुक्त किए जाने से एक साल से भी कम समय में लॉस एंजलिस मंदिर वंशावली पुस्तकालय को समर्पित किया था। उन्होंने मृत पूर्वजों के विषय में बोला था कि वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप और मैं इस खोज को करेंगे जो कि मार्ग से बाधा दूर करने के लिए जरूरी है, और इस प्रकार मंदिर जाएंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे जिसे वे स्वयं पूरा नहीं कर सकते। 20 जून 1964 को जब उस समय में एल्डर मॉन्सन ने इस समर्पण टिप्पणी को दिया था, तब केवल 12 मंदिर ही कार्य कर रहे थे। अध्यक्ष मॉन्सन की गिरजे की उच्च परिषद की सेवा के दौरान कार्य कर रहे थे 142 मंदिरों में से 130 को आरंभिक रूप से समर्पित किया जा चुका था। हमारे समय में उद्धार के कार्य की शीघ्रता को देखना यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। 28 और मंदिरों की घोषणा की गई और पूरा होने के चरण में है। परिवार इतिहास तकनीकी ने भी नाटकीय रूप से तरक्की की है। अध्यक्ष हावर्ड डब्ल्यू हंटर ने मार्च 1995 को घोषणा की थी, मृतकों के लिए विधियों को उपलब्ध कराने के पवित्र कार्य की शीघ्रता के लिए हमने सूचना तकनीकी का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। तकनीकी की भूमिका को स्वयं प्रभु ने गति दी है। हालांकि जो कुछ हम तकनीकी से कर सकते हैं उसकी अभी हमने केवल शुरुआत मात्र ही की है। इस भविष्यवक्ता कथन के 19 वर्षों के दौरान तकनीक को तेजी लगभग अविश्वसनीय रही है। युवा बच्चों की 36 वर्षीय माँ ने हाल में आश्चर्य करते हुए मुझे बताया था, जरा विचार करें, परिवार इतिहास केंद्र में माइक्रोफिल्म का अध्ययन करने के स्थान पर आप बच्चों को के सो जाने के पश्चात मैं अपनी किचन की मेज पर कंप्यूटर पर परिवार इतिहास का कार्य करती हूँ। मंदिर और परिवार इतिहास कार्य केवल हमारे लिए नहीं है, उनका विचार करें, इस संसार की दूसरी ओर चले गए हैं और बचाए जाने वाली विधियां की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें आत्मिक जेल के बंधन से मुक्त करेंगी। जेल का अर्थ एकांतवास या कैद का की अवस्था है। जो कैद में है, हो सकता है विलियम सरोयान के प्रश्न पूछ रहे हैं, अब क्या होगा। सॉल्ट लेक मंदिर में एक विश्वासी बहन ने विशेष आत्मिक अनुभव बांटा था। प्रतिनिधिक पुष्टिकरण विधि होने के बाद जब वह पुष्टिकरण कक्ष में ही थी, उसने सुना और कैदी मुक्त किए जाएंगे। उसने उनके लिए बहुत इसे बहुत जरूरी समझा जो अपने बपतिस्म और पुष्टिकरण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। घर वापस लौटने पर अपने धर्मशास्त्रों में उस वाक्य खोज को जिसे उसने सुना था, उसे सिद्धांत और अनुबंध के 128 खंड में जोसेफ स्मिथ की घोषणा मिली। भविष्यवक्ता जोसेफ हमें आनंद मनाने और खुशी होने की प्रेरणा देते हैं। पृथ्वी गा उठेगी, मृतक हमारे राजा इमैनुअल, जिसे संसार की सृष्टि के पूर्व नियुक्त किया गया था, और प्रशंसा में गा उठेंगे। प्रश्न यह है कि हमें क्या करना चाहिए। भविष्यवक्ता जोसेफ ने प्रभु के पवित्र मंदिर में हमारे मृतकों का विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी थी जो कि स्वीकार योग्य होंगे। गिरजे के मार्गदर्शक ने अपने पूर्वजों की खोज करने के और उनके लिए मंदिर की विधियां संपन्न करके इलाया की आत्मा के अनुभव करने के लिए तकनीकी का उपयोग करने के लिए उभरती पीढ़ी को स्पष्ट निर्देश दिया है। यदि प्रत्येक वार्ड में युवा न केवल मंदिर जाते और अपने मृतकों के लिए बपतिस्मा करते, बल्कि अपने परिवारों को और वार्ड में अन्य सदस्यों के परिवार के नामों को विधियां संपन्न कराने के लिए देते हों, वे और गिरजे दोनों आशीषित होंगे। अपने प्रयासों और जिनकी आप सेवा करते हैं उनसे अंततः मिलने में मृतकों की सहायता को कम ना समझें। अपने स्वयं के परिवार को एकत्रित करने की आशीष के महत्व की कल्पना समझ से परे है। गिरजे के विश्व ही सदस्यता में 51% वयस्क लोगों के माता पिता दोनों गिरजे की फैमिली सर्च इंटरनेट साइट में उनके परिवार वृक्ष में नहीं है। 65% वयस्क लोग सभी दादा दादी नाना नानी सूचीबद्ध नहीं है। याद रखें, हम बिना अपनी जड़ों और शाखाओं के नहीं बचाए जा सकते। गिरजे के सदस्य को इस आवश्यक सूचना को पाना और देना चाहिए। हमारे पास अंततः परिवारों के लिए उद्धार का ये शानदार कार्य पूरा करने के लिए सिद्धांत मंदिर और तकनीकी उपलब्ध है। मैं एक तरीके का सुझाव दे सकता हूँ जिससे इसे किया जा सकता है। परिवार एक परिवार वृक्ष सभा का आयोजन कर सकता है। ये एक बार बार की जाने वाली गतिविधि होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक वर्तमान परिवार इतिहास कथा और फोटो लाएगा जिसमें दादा दादी नाना नानी और माता पिता की प्रिय वस्तुएं होंगी। हमारे युवा लोग अपने परिवार के सदस्यों के जीवन के बारे में सीखने के लिए उत्साहित हैं। वे कहां से आए और उन्होंने जीवन कैसे बिताया। बहुतों के मन उनके माता पिता की ओर फिर चुके हैं और उनकी कथाओं और फोटो को चाहते हैं और उनके पास इन फोटोओं और कथाओं को स्कैन और फैमिली ट्री में अपलोड करने और स्रोत दस्तावेज को पूर्वजों के साथ जोड़कर हमेशा के लिए सुरक्षित करने की तकनीकी योग्यता है। अवश्य ही मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कौन सी विधियां अभी भी पूरी की जाने हैं और जरूरी मंदिर कार्य के लिए निर्देश दिए जाएं। परिवार सूचना कथाएं और फोटो रखने के लिए माय फैमिली पुस्तिका का उपयोग किया जा सकता है जो कि फैमिली ट्री में अपलोड की जा सकती है। अपनी दिव्य नियति को बचाने के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं हमारी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके लिए जो सब्त के दिन को संपूर्ण परिवार के रूप में अधिक लाभदायक बनाना चाहते हैं, परिवार इतिहास कार्य की शीघ्रता एक उपयोगी गतिविधि है। एक माँ बहुत खुश होकर बताती है कि कैसे उसका 17 साल का बेटा गिरजे के बाद रविवार को कंप्यूटर पर परिवार इतिहास के कार्य को करता है और कैसे 10 साल का बेटा अपने पूर्वजों की कथाएं सुनना और फोटो देखना पसंद करता है। इससे उनका संपूर्ण परिवार इलाया की आत्मा को महसूस करने के लिए आशीषित हुआ है। हमारी अनमोल जड़ों और शाखाओं को पोषण किया जाना चाहिए। यीशु मसीह ने प्रतिनिधिक प्रायश्चित के लिए अपना जीवन दे दिया था, उसके अय्यूब के प्रश्न का समाधान किया था, उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, जो कि हम स्वयं नहीं कर पाते। हम हालांकि प्रतिनिधिक विधियों को कर सकते हैं और वास्तव में अपने स्वयं के परिवारों के लिए सियोन पर्वत पर उद्धारक बन सकते हैं। मैं उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान और हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए पिता की योजना की निश्चितता से गवाही देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।